மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோகை மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜைன தர்மோஸ்து மங்களம் ஆத்மா ஞானம் ஸ்வயம் ஞானம் ஞானாதன்யக்கரோதி கிம் பரபாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோஹோயம் வ்யவஹாரிணாம் அஜ்ஞானதிமிராந்தானாம் ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமஹ. நிமித்த உபாதான் சர்ச்சா மாதிரி சொல் ரீ ஹே. निमित्त उपादान एक अंश ले नाम का जो पुस्तक है डॉक्टर हुकुम सिंह जी हरी ने लिखा हुआ, उसमें पेज नंबर 4 पर हम आए थे। कल हमने देखे थे कि कारण दो प्रकार के होते हैं, याद है उनके नाम दीपाली? उपादान कारण और निमित्त कारण। ये किसके कारण है? कार्य के। कार्य किसको कहना? हाँ प्रफुल्ल भाई, कार्य किसको कहते हैं आपको याद है? हाँ काम होगा उसको हम क्या कहते हैं शास्त्रीय अपनी भाषा में? हाँ पर्याय। देखो कार्य कहो या पर्याय कहो, क्योंकि हम द्रव्य गुण पर्याय सीखे हुए हैं। हर एक द्रव्य के हर एक गुण में हर समय कोई ना कोई उसकी अवस्था रहती। ज्ञान गुण का कार्य क्या है? जानना 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 जानना। सम्यक दर्शन ये क्या है? कार्य है, पर्याय है। वो किसका कार्य है? कौन से गुण का कार्य है? हाँ वे तो सम्यक दर्शन पर्याय है, वो कौन से गुण का कार्य है? आप समझे? हाँ सम्यक दर्शन, दर्शन शब्द है ना, तो ये दर्शन गुण तो नहीं, वो ज्ञान दर्शन वाला दर्शन नहीं है। दर्शन शब्द दो गुणों के लिए आता है, एक ज्ञान दर्शन वाला दर्शन और दूसरा कौन सा है? श्रद्धा। कहते हैं ना श्रद्धा मिथ्या थी, श्रद्धा सम्यक हुई। कल शाम को बात आई थी ना श्रद्धा के दो पर्याय, मिथ्या या सम्यक। कल शाम को बताया था, कल दोपहर को बताया था। अच्छा रविवार के दोपहर की क्लास में। तो ये जो पर्याय हुई, ये जो कार्य हुआ, ये कहाँ हुआ, कौन से गुण में हुआ? श्रद्धा गुण में। तो श्रद्धा गुण का ये कार्य है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसका कारण कौन कौन है। तो हमने कल देखा कि कारण दो प्रकार के, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो उपादान कारण किसे कहते, कल हमने परिभाषा इसमें से देखी थी। किसको याद है? फिर भी याद है बोलो। आप बोलिए सिंधु बहन। आप कहिए। हाँ उपादान कारण कहते हैं। अभी जो घड़ा बना ये कार्य हुआ, तो घड़े रूप कौन परिणमित हुआ? मिट्टी। तो घड़े का उपादान कारण कौन रहा? मिट्टी। इतना तो हमने देखा, ये उपादान कारण। और जो कुम्हार वो कैसा कारण है? निमित्त कारण। निमित्त कारण की परिभाषा किसको याद है? अश्रुबेन बोलिए। अनुकूल होने का, बराबर है अनुकूल होने का। आप बोलिए कि निमित्त कारण कहते हैं। तो कुम्हार ये घड़े का निमित्त कारण है। तो हमने दो भेद देखे थे, उपादान कारण और निमित्त कारण। अब इसके जो और कुछ भेद है वो आज हम देखेंगे। यहाँ तक तो हम समझे। कल आपका इंदुबेन का एक प्रश्न था, क्या था इंदुबेन? ऐसे पूछा था, क्यों मैंने आपको शंका थी इसलिए पूछा था। नहीं बनाया। तो आपके प्रश्न में ऐसा है कि कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया फिर भी उसने टाइम वेस्ट किया, किसने? आप एक तरफ से बोल रहे घड़ा नहीं बनाया और दूसरे तरफ से बोल रहे घड़ा बनाने में टाइम वेस्ट किया। एक प्रश्न की गलती ख्याल में आती है? मैंने मान्यता के हम क्या मानते हैं, कुम्हार ने एक भी घड़ा बनाया नहीं, ठीक मान्य है कि नहीं है? मान्य है। उस पर आरोप आया और फिर दोबारा क्या पूछती हो, फिर उसने घड़ा बनाने में पूरी जिंदगी वेस्ट की। ये दो कॉन्ट्रोवर्सियल पॉइंट है कि सेम लगते हैं आपको? यानी वो कुम्हार अगर यह मानता कि अरे रे मैंने सारी जिंदगी घड़ा बनाने में बेकार बेकार व्यर्थ कमाई, तो उसने क्या माना, हाँ मैंने इतने सारे घड़े बनाए। देखो ये मान्यता में कहाँ बैठा हुआ रहता है, अंदर ही अंदर। कह तो दिया हमने उसको निमित्त, फिर भी वो क्या मान रहा है, अरे रे मैंने सारी जिंदगी घड़ा बनाने में व्यर्थ कमाई, यानी मैंने इतने सारे घड़े बनाए ऐसे मान रहा है वो। जो कुम्हार को समय दर्शन होगा तो वो घड़ा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वो बनाने का कार्य तो हो रहा है यानी घड़ा बनेगा, वो निमित्त भी है वहां, वो समय दर्शन हुआ इसलिए घड़ा बनाने का छोड़ नहीं दिया उसने। होने के समय वो घड़ा बनाते बनाते थोड़ी समय दर्शन होगा, जैसे हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान होता है वैसे नहीं होता। घड़ा बनाते बनाते जब घड़ा बनाना छोड़कर कुछ एकांत में बैठकर तत्व का चिंतन करके आत्मोन्मुखी परिणाम हो गए तब उस समय में उसको समय दर्शन होगा। तो समय दर्शन के पश्चात भी औरों को क्या दिख रहा है, वो घड़ा बनाते हुए दिख रहा है और उसको क्या दिख रहा है, उसको क्या अनुभव आ रहा है, घड़ा बन रहा है और मैं इसको जान रहा हूँ, है ना? कुम्हार का कार्य क्या है, जानना। उसका जो जानने रूप कार्य हो रहा है, श्रद्धा रूप कार्य हो रहा है, चारित्र का जो कुछ कार्य, अनंत गुणों का जो कार्य है, वो जो जो पर्याय है उसका वो करता है और परद्रव्यों का करता वो भाषित ही नहीं होता उसको कि नहीं नहीं मैं उसमें निमित्त तो होना। जब ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान होता है तो अपने पर निमित्त पने का भी उसको अहोभाव जो आता है, अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया परंतु मैं तो निमित्त हूँ ना, निमित्त हूँ ना, यानी ऐसे कहने वाले वो कर्ता पने का ही पोषण करते। तो निमित्त कर्ता भी क्यों नहीं होते ज्ञानी? देखो ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, फिर भी हम इसको एक बार सुने तो सही। जैसे मिथ्या तो अवस्था में वो तो परद्रव्य का कर्ता मानता था, सम्यक दर्शन होने के बाद वो तो अपने राग का भी ज्ञाता रह जाता है, करता नहीं होता, यानी सोच सोच कर राग भी नहीं, जो जो राग आते हैं पर्याय में उसको वो जानता है। तो वो जानता है कि अभी ये घड़ा बनाने की इच्छा रूप राग यहाँ चल रहा है, वो राग का कर्ता होकर नहीं कर रहे, राग को भी वो भिन्न ज्ञान रूप रहकर राग को भी अनुभव रहे, तो राग का भी ज्ञाता है। राग का ही करता नहीं तो घड़े का करता कैसा होगा? और फिर अपने को निमित्त करता भी नहीं मानता, ज्ञान में आएगा उसके कि यहाँ ये निमित्त रूप से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, परंतु अपने को निमित्त करता मानना अलग बात है। लोगों को क्या लगता है, अभी समय दर्शन नहीं होता तब तक अन्य लोगों के लिए मैं निमित्त तो बनूं, कि इस मान्यता में अपनी सारी मान्यता की इसमें कहीं ना कहीं छोटी में सूक्ष्म भूल रह जाती। हमें तो अपनी मान्यता ही टटोलना है। तो निमित्त की परिभाषा जो है, देखो क्या है निमित्त की परिभाषा, दोबारा हम देखेंगे इसको। हाँ संजय भाई आप बताना, अभी जो कुम्हार ने घड़ा बनाया इस पर हम ये घटित करेंगे, जो यानी कुम्हार कौन लगाएगा, आप लगा सकती हो कुम्हार और घड़ा। अच्छा मैं एक बताती हूँ, बाई ने रोटी बनाई, जो बाई स्वयं तो रोटी रूप नहीं परिणमी परंतु रोटी की उत्पत्ति हुई, कार्य बना, उसमें अनुकूल होने का आरोप जिस पर आया, वो जो बाई है वो निमित्त कारण है, रोटी बनी उसकी। अब घड़ा कुम्हार में लगाओ आप, आसान है कि सामने देख कर लगाना। प्रफुल्ल भाई आप लगा सकोगे? नहीं, इस पर ये परिभाषा उस पर घटित कर रहे, जो यानी कुमार स्वयं कार्य रूप में, यानी घड़े रूप तो नहीं परिणाम, ऐसा लगाना आप। हाँ, घड़ा बनने में, हाँ, में अनुकूल होने का आरोप आया। आप पुस्तक में देखकर बता, ये जो पुस्तक की परिभाषा है ना, तो उसी पर घटित करना। हाँ, बहुत बढ़िया। अब कौन लगाएगा? हाँ, सुनार ने गहने बनाए 80 रुपये नाप। कार्य के बदले भी गहने रूप नहीं परिणमित, तो यानी सुनार स्वयं तो गहने रूप नहीं परिणमा। आया कहो या आ सके कहो, तो इसलिए उसको निमित्त निमित्त कारण कहते हैं। तेजू भी आप लगाना। दर्जी ने कपड़े सिलाए, दर्जी पर आया, हाँ, इसलिए उसको क्या हुआ? निमित्त कारण हुआ। क्या में आया बराबर? अब सम्यक दर्शन हुआ तो हम क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन में सच्चे देव गुरु शास्त्र निमित्त है। तो दीपाली आप लगाइए, सच्चे गुरु लगाना, गुरु लगाना, यानी गुरु निमित्त हुए सम्यक दर्शन में। अभी कार्य कौन सा हुआ है? हाँ, यानी शिष्य के सम्यक दर्शन लेना, गुरु के अपना भी सम्यक दर्शन है। उन पर आ सके, हाँ, तो भगवान ने दिव्य ध्वनि बताई, या भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी, तो आप उस पर लगाओ। इस तरह से एक एक कार्य पर हमको, हाँ, एक एक कार्य पर घटित करना। अभी आएगी डिटेल में, वापिस आई आएगी। अभी तो हम यहाँ, हाँ, ये जो अभी आपने सुना ना, तो इसी को हमको बहुत, क्योंकि निमित्त के बारे में ही हमारी बहुत भ्रांतियां चल, अनादि से निमित्ताधीन दृष्टि ही है। वो भी सारे निमित्त है। अभी एक कुम्हार को ही हमने जरा मुख्यता दी ना, तो कुम्हार को लगता है चलो मैं नहीं बना, तो ये सारे चीजें हटा दो, चाक डंडा बाकी सब और चीजें, और कहो उसको बना, ये हमें नहीं बना सकता, है ना? हाँ, ध्वनि के खिलने में, या वो उत्पत्ति हुई, उन पर आरोप आया, भगवान पर आरोप आया। हमने क्या कहा, ये भगवान की दिव्य ध्वनि है, तो भगवान ने दिव्य ध्वनि बताई है, ओंकार ध्वनि निकाल आई। तो कहते हैं अभी हम बोल रहे हैं ऐसा जो कहते हैं, तो लगाओ आप। हाँ मैं बोल रही हूँ, लगाओ। हाँ अनुकूल होने का, बोलने रूप जो कार्य है उसमें मैं निमित्त कार्य। अब ये पेज नंबर 3 पर ये कारण क्यों सीखने, क्योंकि जो कर्तृत्व बुद्धि है हमारी, एक तो कर्तृत्व बुद्धि दूसरे का मैं करता हूँ मानता है, अभिमान करता है, या पराधीन, दूसरा होगा तो मुझे सुख मिला, दूसरा होगा तो मुझे समय दर्शन होगा, भगवान ने मेरे पर उपकार किया तो मेरा कल्याण होगा, ये जो सारी बातें हैं कि गुरु ने उपदेश दिया तो मुझे ज्ञान होगा, सामने वस्तु है है इसलिए मुझे ज्ञान होता है। जैसे दिन आपका प्रश्न था ना कुछ दिन पहले कि सामने ये वस्तु है है तो मुझे ज्ञान हुआ, ये हुई निमित्ता। तो जब ज्ञान हुआ, सामने वस्तु थी उसकी उपस्थिति थी, तो ज्ञान होने में अनुकूल होने का आरोप इस पर आ गया, ज्ञान की जानने रूप कार्य यहाँ हुआ, तो पर्याय यहाँ हुई, तो उसका उपादान कौन है? स्वयं आत्मा कहो या ज्ञान, उसका ज्ञान गुण कहो, तो जिसकी पर्याय हुई वह स्वयं करता, और आरोप किस पर आएगा? सामने गेय पर। तो हमें क्या लगता है, गेय के देखो गेय नहीं होगा तो ज्ञान होगा ही कैसा, आप इसको हटाओ कहाँ ज्ञान हो रहा है, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि हमारी ये अनिमित्ताधीन दृष्टि पड़ी है, और इस दृष्टि को हमको हमारी दृष्टि सही करनी है। गेय से ज्ञान हुआ ऐसा ही हमारी मान्यता है, तो गेय से ज्ञान हुआ एक कार्य हुआ, तो ज्ञान हुआ एक कार्य हुआ, तो उसका उपादान कारण कौन है? ज्ञान गुण कहो या आत्मा कहो, और उस समय जानने रूप जो कार्य हुआ उसमें अनुकूल होने का आरोप किस पर आया? सामने गेय था, उस पर, सामने जो चीज है जिस संबंधी हमारा ज्ञान हुआ था, हम क्या कहते हैं, इसके कारण हमको ज्ञान हुआ, सामने नहीं थी तो कब ज्ञान नहीं हो रहा था, यानी हमारी दृष्टि निमित्ताधीन है, वो निमित्त है, उसकी उपस्थिति होती है, ऐसा नहीं कि उसकी उपस्थिति नहीं होती, यदि उपस्थिति भी नहीं होती तो हम उसको निमित्त भी नहीं कहते। तो निमित्त भी ये कार्य को बताने वाला है, करने वाला नहीं है। देखो ये बातें आगे आने वाली थी, मैं अभी बताना चाहती, निमित्त कार्य को बताता है। अब सामने कुदेव कुगुरु और कुगुरु शास्त्र का निमित्त है, तो वो कौन से कार्य को बताएगा? समय दर्शन के। तो उस निमित्त को, निमित्त का ज्ञान करना जरूरी, तो वो निमित्त की तरफ देख कर हम बता सकते हैं कि यहाँ समय दर्शन का कार्य 3 काल में नहीं हो सकता। निमित्त की भी, ये निमित्त की क्यों बताई शास्त्र में, इसने निमित्त का कथन क्यों किया? निमित्त यदि नहीं करता है तो निमित्त की बात ही करने की जरूरत नहीं थी, बस बता देते हैं सारा निज शक्ति से होता है, परंतु निमित्त वहाँ उपस्थित है, उपस्थित है, उसने कार्य में कुछ हेरा फेरी नहीं की, मदद नहीं की, असर नहीं किया, प्रभाव नहीं किया, कुछ नहीं किया, परंतु उसकी उपस्थिति है और वो उपस्थिति उस कार्य को बता रही है। तो हमें ये जब हम ज्ञान करते कि जब सम्यक दर्शन रूप कार्य होता है तो वहाँ सच्चे देव गुरु शास्त्र ही निमित्त होते हैं, जब ऐसा ज्ञान हुआ तो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के आश्रय लेने की बुद्धि रहेगी, अरे उनकी तरफ जाने के भी भाव भी नहीं उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं, नहीं मैं अभी यहाँ बैठा हूँ कुदेव के पास, चलो चलो अभी मुझे छोड़ना है, तो सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं, उसको वो भाव हो गया ही नहीं, निमित्त का अकेला ज्ञान करते। तो इसीलिए निमित्त का भी कथन इतना बारंबार शास्त्र में आता है, परंतु हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं हम देव सच्चे देव गुरु शास्त्र का निमित्त जुटाना चाहिए तो हमको वहां बैठने रहने से समय दर्शन होगा, वहाँ भी निमित्ताधीन दृष्टि करने के लिए निमित्त का कथन नहीं है, परंतु सच्चा निमित्त क्या होता है? झूठा नाम का कोई निमित्त ही नहीं, क्योंकि कार्य होता है तब तब निमित्त होता है। द्रव्यों में कौन से सच्चे निमित्त है, कौन से झूठे, बोलो देवेंद्र भाई। द्रव्य में सच्चे निमित्त कौन है, झूठे निमित्त कौन है? तो निमित्त नाम का भी कोई द्रव्य है, कोई तो निमित्त रूप परिणमित होते हो गए और कोई उपादान रूप। तो छह द्रव्यों में से उपादान रूप कौन से द्रव्य है? प्रत्येक द्रव्य में हर समय हर गुण की पर्याय चल रही है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य उपादान रूप है तीनों काल कायम। तो सभी अपने अपने लिए क्या है, उपादान है। तो सभी की एक एक कोई ना कोई विशिष्ट पर्याय होती है, और जो जो पर्याय अन्य द्रव्य के कार्य के हमें लगता है ना कि इसमें अनुकूल रूप लग रही है, तब उसको निमित्त बता देते। द्रव्य को निमित्त नहीं कहते, उसकी पर्याय को कहते। ये डिटेल्स अभी आएंगे आगे, हम तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसके थोड़े फिर भेद प्रभेद भी देखेंगे ना, तो ये सारा ख्याल में आता जाएगा। ये आपने भी वो तो अंत वो सूक्ष्म बात है, वो अंदर के अंदर निमित्त होते। द्रव्य के एक गुण में दूसरा गुण निमित्त कहलाता है, परंतु उसकी चर्चा में अभी इतने सूक्ष्मता में अभी हम अभी नहीं जाएंगे। तो समय दर्शन में देशना देशना को निमित्त कहा, एक गेय से गेय सामने, गेय सामने था, उपस्थित था, और यहाँ ज्ञान हुआ। तो ज्ञान हुआ वो ज्ञान की पर्याय, वो नहीं उसकी बात नहीं दिया। ये गेय जो है वो ज्ञान में रूप पर्याय परिणमित नहीं हुआ। गेय है वो ज्ञान ज्ञान की पर्याय रूप परिणमित नहीं हुआ, बराबर। ये जो ज्ञान जो है, अभी आईने के सामने पेंसिल रखी, आईने में जो प्रतिबिंब है, दर्पण में जो प्रतिबिंब है, वो क्या है? अभी उस पर घटाएंगे। वो पर्याय किसकी है, पेंसिल की है कि दर्पण की? दर्पण की है। तो दर्पण स्वयं उस प्रतिबिंब रूप परिणमित हुआ, तो हम क्या कहते हैं, किसका प्रतिबिंब है? पेंसिल का। तो पेंसिल स्वयं तो उस पर्याय रूप नहीं परिणमित हुई, दर्पण में जो प्रतिबिंब आया है उस रूप पेंसिल नहीं परिणमित हुई। पेंसिल तो जहाँ की वहां, यदि पेंसिल उस रूप परिणमित हुए और यहाँ 100 दर्पण लगाओ तो ये पेंसिल को कितना काम कराना पड़ेगा। तो ये पेंसिल तो स्वयं प्रतिबिंब रूप परिणमित नहीं हुई है, परंतु वो जो प्रतिबिंब हुआ तो सामने पेंसिल उपस्थित थी, तो इसका ज्ञान कराने के लिए इसको हम निमित्त कहते। इसने कुछ नहीं किया, वो सारा दर्पण का ही अपना स्वयं का वो उसकी स्वच्छता है, उसका जो गुण है, उसमें पदार्थों को झलकाने की जो पावर है, तो वो अपने कारण से हुआ, परंतु सामने उपस्थित है ये, तो इसका प्रेजेंस बता दो। हम दर्पण के प्रतिबिंब की तरफ देखते, भी समझो हमारे सामने कोई वहां बैठा है और सामने प्रतिबिंब दिखता है ना उसका, तो प्रतिबिंब की तरफ देखते हम उसकी उपस्थिति को देखते, उसकी तरफ देख के कह सकते कि सामने दर्पण में इसका प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी निमित्त कार्य को बता सकता है, परंतु कथनी जो है, लौकिक जो व्यवहार है, वो हमेशा निमित्त पर आरोप आकर हम कहते कि सुनार ने गहने बनाए, कुम्हार ने घड़ा बनाया, भाई ने रोटी बनाई, कथन होता है निमित्त से, परंतु कार्य होता है उपादान से। कथन करने में कोई दोष नहीं है, कथन के पीछे अपना अभिप्राय क्या है तो हमको अभिप्राय सुधारना है, कथन उतना ही वैसा ही रहेगा। अब जो शुरू में प्रथम से अभी पुस्तक जहाँ से शुरू हुआ ना, अभी हमने पाठ पढ़ना, हमने तीन पॉइंट देखे थे। देखो कि ये जो निमित्त और उपादान के विषय में सही परिज्ञान यानी सही जानकारी हुए बिना, तीसरी लाइन में हमने तीन पॉइंट देखे थे कि परावलंब की दृष्टि एवं रूप की समाप्त नहीं होती। हमें समय दर्शन प्राप्त करना है तो हम भगवान के ही भरोसे पड़े रहते हैं, ये गुरु को ही, गुरु ही देखना देगा। हाँ, उसका उद्देश्य ना बस कि हमने किसी व्यक्ति को गुरु मान लिया तो बस हमारा कल्याण हुआ, ऐसी पराधीन वृत्ति समाप्त हो जाती है। स्वावलंबन का यानी उसको जाने बिना स्वावलंबन का भाव जागृत नहीं होता। अब जब हमने जान लिया कि जो जो पर्याय है वो उसके स्वद्रव्य में होती है, हमारी जो पर्याय होगी वो कहाँ होगी, हमारे ही स्वद्रव्य में से होगी, तो कहाँ देखना आया, पर्याय की तरफ भी देखने की जरूरत नहीं है, अपने स्वद्रव्य में से पर्याय हर समय निकलेगी, तो स्वद्रव्य की तरफ देखी, स्वावलंबन का भाव जागृत होगा और मुक्ति के मार्ग का सम्यक पुरुषार्थ भी पुरायमान नहीं होता, यानी इसको जाने बिना नहीं होता। जब इसको जानेंगे तो हमें पता चलता है कि यही तो सही पुरुषार्थ है, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ यही है कि निमित्त क्या, उपादान क्या, क्रमबद्ध पर्याय क्या, सर्वज्ञता का, ये सारा जानकर ये निमित्त की या पर की जो अवलंबन लेने की वृत्ति है वो समाप्त होकर अपने में ज्ञान सीख जाए, नहीं तो ये उपयोग अपना जो है ज्ञान उपयोग, तो ज्ञान हमेशा बाहर कहीं ना कहीं उलझता रहता है, या तो इंद्रियों के द्वारा अन्य चीजें जानने में उलझता है, या मन के द्वारा किसी पर हम कल्पना करते रहते दिन भर और उसी में राग द्वेष होते रहते। ये सारी अभी बातें हम हल्के हल्के देखेंगे। चलो, ये पुस्तक में हमने देखा है, कल मेरा तो पुराना पुस्तक नया है, मेरे में 3 पेज है, नया पेज 3 है और पुराना 5। देखो, जिस पदार्थ में मिला सबको, जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उस पदार्थ को उपादान कारण, पदार्थ यानी द्रव्य, गुण को भी कभी कभी कहते हैं। तो अभी अभी हमने देखा था ना, घड़े बनने रूप कार्य कहाँ हुआ, कौन से पदार्थ में हुआ, मिट्टी में, तो उस पदार्थ को उपादान कारण मिला सबको। देखो फिर पढ़िए, जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है, निष्पन्न होता है यानी उत्पन्न होता है, कार्य बनता है यानी जिस पदार्थ की, जिस द्रव्य की वो पर्याय होती है, उस पदार्थ को उपादान कारण और जो कार्य निष्पन्न हुआ यानी जो पर्याय बनी उसको क्या लिखा है, टिप्पणी क्या लिखा हुआ, कार्य को क्या कहते हैं लिखा है सेकंड लाइन में, जो कार्य निष्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उपादेय। जो पदार्थ है उसको क्या कहा प्रभु भाई, उपादान, और जो कार्य हुआ उसको यानी पर्याय को क्या कहा, उपादेय, और जो द्रव्य है उसको उपादान। उपादान यह कारण है और उपादेय क्या है, कार्य, कारण कार्य देख रहे हैं ना, तो उपादान की तरफ से जब देखेंगे ना, उपादान की तरफ से देखते हैं, ये चार भी बाद में समझाऊंगी, अभी इतना जो मैं अभी समझा रही हूँ ना उसको समझना है पहले, ये जब हम समझेंगे आप बाद में लिख भी सकते हो, अभी लिखने के लिए आप वहाँ व्यस्त होगे ना, तो मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ उसमें आपको उपयोग इधर उधर जाएगा। देखो, उपादान ये क्या हुआ, द्रव्य, और उपादेय ये कार्य, तो जो कार्य हुआ उसको उपादान की तरफ से अगर हम बताना चाहते हैं, उपादान की दृष्टि से हम कार्य को बताएंगे तो उस कार्य को हम कहेंगे उपादेय। क्या कहेंगे भाई, किसको, हाँ तो अभी घड़ा बना तो उसमें उपादान कौन और उपादेय कौन, बोलो, हाँ कौन उपादेय, हाँ बोलो, हाँ पर्याय कौन सी बनी माटी में से, कौन सी बनी अभी असन जी भाई, कार्य क्या बना अपना, माटी में से क्या बना, घड़ा बना, तो अभी फिर से उपादान उपादेय लगाइए, उपादान है हाँ, नहीं नहीं कार्य हुआ उपादेय हुआ बराबर, और कुमार क्या था, निमित्त था। अच्छा, आप रोटी बनी, भाई ने रोटी बनाई ना, तो भाई को हमने निमित्त में रखा, अभी अकेला उपादान और उपादेय की चर्चा करेंगे। आटा कहो गयु गए ना, उपादेय रोटी बनी उपादेय और आटा है वो उपादान, सोने के गहने बने, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन उपादेय और उसका उपादान जीव द्रव्य कहो या श्रद्धा गुण कहो कह सकते वैसे। तो ये उपादान और उपादेय आपकी क्या भूल हुई, मिट्टी उपादान और घड़ा है वो उपादेय, कार्य को उपादेय, कब कहेंगे कार्य को उपादेय, जब हम उपादान की तरफ से उपादान कारण का कार्य ऐसा कहेंगे तो वो हम उसको उपादेय कहेंगे। अब निमित्त ओर से क्या उसको उसी कार्य को निमित्त की परिवर्तन निमित्त की ओर से गुरु ने ध्यान दिया कहते हैं तो ध्यान दिया जाता है, कहाँ हुआ, हाँ 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 उपादान, हाँ बराबर बराबर उपादान उपादेय समझेंगे ना, उपादान उपादेय निमित्त नैमित्त का और एक शब्द आएगा तो हम अभी खाली उपादान और उपादेय इतना ही घटाएंगे, ये दोहराती हूँ फिर परिभाषा। उपादान उपादान हाँ, अभी इसमें हमने देखा ना कार्य हुआ, हाँ घड़ा, हाँ निमित्त हुआ, नहीं यहाँ पहले तो हमने निमित्त को देखा था, कुमार को देखा था निमित्त में रखा, फिर हमने उपादान को देखना है हमको, तो जिसकी पर्याय है उसको उपादान कहेंगे, तो घड़ा ये कार्य बना मिट्टी से बना तो मिट्टी उपादान हुआ और घड़ा उपादेय हुआ। हाँ आप एग्जांपल शुभ भाव उपादेय उपादान कौन है, अरे विभाव परिणमन को उपादान कैसे कह रही है, चारित्र गुण। हाँ देखो अभी क्या पूछा था प्रश्न कि भगवान को देखकर शुभ भाव आया, तो शुभ भाव आया ये कार्य हुआ, ये कार्य कौन से गुण में हुआ है, ऐसा ऐसा लेना, यानी वो कार्य हुआ वो क्या है उपादेय और उसका उपादान कौन है, चारित्र गुण कहो या जीव द्रव्य कहो, और फिर भगवान को क्या कहेंगे निमित्त, हाँ सत्र, हाँ हाँ उपादान चारित्र गुण कहो या जीव द्रव्य कहो, हम गुण या द्रव्य दोनों को भी ले सकते हैं, यानी कोई चीज देखकर अपने को घृणा उत्पन्न हुई नहीं 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 घृणा, हाँ आप लगा सकते, हाँ लगा, हाँ उसका, हाँ हाँ कौन सा गुण लेंगे, चारित्र गुण। जुगुप्सा है क्या है? क्या है जुगुप्सा? क्या है? नौ कथा है ना। देवेंद्र भाई की बात सुनकर मुझे हंसी आई। लगाओ अभी दीपाली, मुझे हंसी आई। हाँ, हंसी आई कार्य हुआ। उपादेय निमित्त कार्य बराबर। उपादान कारण कौन है? हाँ आप बोलिए। जिसको हंसी आई वो स्वयं। हाँ यानी वो क्या? चारित्र गुण। जीव का चारित्र गुण हास्य है, वो क्या है? कथा है ना, नौ कथा है। तो वो नौ कथा है किसका है? हाँ जीव का। तो ये चारित्र गुण का, चारित्र गुण का विवाह करना है ना। वो ख्याल में आता है उपादान उपादेय? सचिन जी भाई ख्याल में आया? अभी नहीं आया। देखो नहीं, देखिए पैसा आया ऐसा देखो, मेरे जेब में पैसा आया। हाँ अभी पैसा आया। हाँ पैसा आपके जेब में था, मेरे जेब में आया। अभी कार्य क्या हुआ? हाँ पत्नी जी निमित्त में चली गई। हाँ और उसका उपादान उद्गल द्रव्य स्वयं, और गुण में लगाना है तो क्रिया होती है। यानी जिसका हम उसका जिस जो कार्य है उस कार्य का जब सच्चा कारण है उसके तरफ उसका हम उसका हिसाब दे सकते हैं। हम जो जो कार्य हो रहे कर्म है इसलिए अंतराय कर्म ने हमको रोका, यहाँ नहीं आया। हम यहाँ नहीं आए क्यों? अंतराय कर्म आना आया, ऐसे कहते हैं ना शास्त्र में। क्यों नहीं आते हैं? तो हम शास्त्र में नहीं आए तो क्या हुआ? अंतराय कर्म ने हमको रोका। तो अंतराय कर्म क्या है? हाँ निमित्त। तो हम नहीं आए, क्या हुआ? कार्य हुआ ना, नहीं आने का हमने कार्य, वो उपादेय हुआ। और उसके उपादान कौन है? क्रियावती शक्ति भी देना। हाँ हम नहीं आए बताए ना, इसलिए क्रियावती शक्ति लेना और उसी में लगाना है तो उसमें लगाना, बाकी सब में लगा सकते। हाँ आगे चलते देखो। एक छानवे है बराबर उपादान उपादान, देखिए निमित्त को उपादान में नहीं डालना, ये उपादान उसी द्रव्य में, यानी उपादान जो है वो द्रव्य है जिसमें ये पर्याय घटित हुई, जो स्वयं पर मूल, ये यहाँ मूल वस्तु कि जिसकी वो पर्याय है। एक ही द्रव्य, द्रव्य और उसकी पर्याय में कौन सा संबंध आया? हाँ जीव द्रव्य उपादान कहोगे, कहेंगे तो जीव की जो जो सारी पर्याय है वो उपादेय होगी। पुद्गल जब हम उपादान कहेंगे तो पुद्गल की सारी पर्याय क्या होगी? उपादेय होगी। समझ में आया बराबर? अब हम ये कहते ना धर्म द्रव्य किसे कहते हैं कि जो जीव और पुद्गल में चलने में निमित्त हो, तो जीव चला, जीव चला और ये पुद्गल यहाँ से ऊपर आया, दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग कार्य है, हम दोनों पर अलग अलग घटाएंगे। जीव चला और धर्म द्रव्य उसमें चलने में निमित्त हुआ, इस पर घटा हुआ उपादान और उपादेय है। जीव ने की, हाँ चला, ये उपादेय हुआ और उपादान आप बोलिए। जीव हुआ, कौन चला? जीव, तो जीव हुआ उपादान और उसमें निमित्त कौन हुआ? निमित्त कौन हुआ? धर्म द्रव्य। अब ये पेंसिल यहाँ की टेबल पर, ये मैंने ऊपर उठाई, ये कार्य हुआ ना, क्या हुआ? पेंसिल यहाँ से यहाँ आई, हाँ धर्म द्रव्य कार्य क्या हुआ? पेंसिल का क्षेत्र क्षेत्रांतर हुआ ना, यहाँ से ऊपर आया, पेंसिल यहाँ से ऊपर आ गई, उसकी जगह बदली ना, तो क्या कार्य हुआ? हलन रूप चलन रूप कार्य हुआ, क्षेत्रांतर रूप कार्य हुआ, तो ये कार्य हुआ उपादेय। हाँ उसका चलना ना, गमन हुआ, उद्गल का यहाँ से यहाँ गमन हुआ, ये उपादेय कौन है? गमन हुआ, ये कार्य हुआ ना, ये उपादेय है, वो कार्य जो है वो उपादेय है। अब इसमें उपादान कौन है? उद्गल द्रव्य, ये पेंसिल रूप जो अभी स्कंध है वो स्वयं गमन रूप परिणमित हुआ है और हम क्या है वहाँ? निमित्त है। हम क्या मानते हैं? मैं जब तक नहीं उठाती देखो ऊपर से, मानते कि नहीं मानते? अपनी मान्यता है, परंतु हम वहाँ उपस्थित है, वहाँ तो अनंत द्रव्यों की अनंत क्रियाएं चल रही है, इसके इतने पुत्र स्कंध है, पुत्र परमाणु है, हाथ के इतने सारे परमाणु है, अपने वो विभाव रूप इच्छा रूप कार्य वो भी एक वहाँ चल रहा है, अनेक कार्य एक साथ हम देखे, परंतु जो जिसका कार्य है उसको उसके खाते में सौंप दो, इतना ही करना है हमें। कुछ अपनी जो ये जो रोज का व्यवहार चल रहा है, जो रोटी बनानी है या कुछ कर रहे हैं या धंधा व्यापार चल रहा है, पैसे आ रहे जा रहे, उसमें कुछ नहीं परिवर्तन करना है। हम क्या पहले क्या सोचते? नहीं नहीं अभी दुकान छोड़कर घर में बैठना चाहिए, अब तक तो हमने पैसे कमाने में बहुत साल बिताया है ना, कड़े बनाने में कुमार में सारी जिंदगी वेस्ट कर दी, यानी हम होते हुए कार्य में उस कार्य का कर्ता ढूंढे बस और समझे, इससे क्या होता है? इससे कर्तृत्व बुद्धि हट जाती है। होते हुए कार्य में हम क्या कर रहे हैं? हम जान रहे कि ज्ञान का कर्तृत्व अपना अपने पास ले ले और परद्रव्यों का कर्तृत्व अपना उनके उनके अपने खाते में डाल दे। हम क्या है? ज्ञान क्या हो गया हमको पर पदार्थों का? उत्तर तो अचेतन है, ये कुछ बताता नहीं है, मेरा कार्य मैं कर रहा हूँ वो जानता भी नहीं है, फिर भी वो अपना कार्य अपना कर रहा है, परंतु हमें इसका ज्ञान हुआ, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमने पूरे सारे अन्य जीवों का और पूरे अनंतानंत पुद्गलों का कर्तृत्व तो अपने माथे ले लिया, मान लिया। हमारे मानने से किसी का कार्य हमने आज तक किया नहीं है, परंतु इसने माना है और पर का कार्य होते तो जानने में तो आ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे जानने में तो आ रहे, और क्या माना? मैंने इनको खिला खिला कर बड़ा कर, कर्तृत्व का अभिमान हुआ ना, ये मिथ्या मान्यता हुई। और ऐसा भी मान रहे मैं दूसरों की पर्याय ऐसी भी नहीं, ऐसी पलटा दू, यानी उसी में इसका विकल्प, इसकी बुद्धि उसी में उलझी रहती है, और जो अपने को जानने का कार्य है वो रह जाता है। अनादि से हर प्रत्येक पर्याय में यही चलता है। तो हम क्या कहते हैं, हम तो इतने दिन कार्य करते थे, अब छोड़कर बैठ जाएंगे तो हमें धर्म होगा, ऐसी मान्यता ही थी। यहाँ तू कर ही नहीं सकता था, कर ही नहीं रहा था, तो पहले भी जान रहा था परंतु उल्टा मान रहा था। अब भी होते हुए कार्य को जानो, शरीर का कार्य होता है। क्या कंटिन्यूअसली वो हिलाता रहता है, हाथ निकालने के बाद भी वो गला कुछ काल तक चाहिए, सांस कुछ काल तक घूमते रहेगा, पंखे का बटन बंद करने के बाद भी पंखा कुछ काल तक घूमता रहता है, वो घूम रहा है कि बंद हो रहा है, बंद होने के लिए अभी घूम रहा है। वैसे हम कर्तृत्व बुद्धि हमारी छूट जाने पर भी जो हमारे रोज के व्यवहारिक कार्य है वो भी कुछ दिन तक या कुछ भाव तक भी चलते रहे, कोई चिंता नहीं, वो भी बंद होने के लिए चलते रहेंगे। कर्तृत्व तो बुद्धि का हाथ उसके पीछे का हमारा हट गया, करने का भाव भी अभी आएगा। बच्चे भी बड़े होते हैं, हम उसको सिखाते भी है, कभी गुस्सा भी करते हैं, उनको सिखामन भी देते हैं, परंतु अभी उसके पीछे मैं कर रहा हूँ ये जो भाव था वो चला गया। होने योग्य कार्य होते रहते हैं, हम उसको जानते रहते और बिल्कुल निराकुलता हो जाती है। तो हमें क्या लगता है, अरे हम ये सीखेंगे तो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा, कुछ चौपट नहीं होने वाला, हाँ दुगुना बढ़ जाएगा, चिंता मत कीना। देखो ये क्या कहते हैं, ये फिर हम पढ़ेंगे इसको, सामने आया उपादान और उपादेय। आज दिन भर घटाना, जहां जहां हम जो जो कार्य करेंगे इसका उपादान कौन है, उपादेय कौन, दूसरे से मत बताना, नहीं तो बोलेंगे क्या ये उपादान उपादेय उपादान उपादेय क्या चल रहा है। वो पिंजारे के वापस ये क्या उपादान उपादेय चल रहा है बोलेंगे। वो कहानी सुनिए ना अपने पिंजारे की, नहीं सुनिए, में आई थी ना। हाँ देखो, जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उस पदार्थ को उपादान कारण कहते हैं, और जो कार्य निष्पन्न हुआ, कार्य ने पर्याय, उसे उपादेय कहा जाता है। ये उपादान की अपेक्षा से कथन करेंगे तो उसी कार्य को हम उपादेय कहेंगे। अभी अगला वाक्य देखो, तथा निमित्त कारण की अपेक्षा कथन करने पर उसी कार्य को, अब जिसको हमने उपादेय जाना था, घड़ा बना मिट्टी उपादान और घड़ा बना हमने उपादेय कहा, वो घड़ा बनने को जो हमने उपादान उपादेय कहा था, उसी अभी घड़े को कुम्हार की अपेक्षा अगर हमको उसको बताना है, निमित्त की ओर से बताना है, तो उसको हम नैमित्तिक कहेंगे। उपादेय और नैमित्तिक ये दो चीजें नहीं है, घड़ा बना एक ही चीज है, एक ही कार्य है। हम मिट्टी की तरफ से देखेंगे तो उसको उपादेय कहेंगे, कुम्हार की तरफ से देखेंगे तो उसको नैमित्तिक कहेंगे। निमित्त नैमित्त को परद्रव्य की वो निमित्त की अपेक्षा से हम उसको कहेंगे तो ये वो उस निमित्त का ये नैमित्तिक है। नैमित्तिक भी कार्य को कहते हैं, ये कार्य दो भिन्न द्रव्यों की बात है ना, ये कुम्हार ये निमित्त है, नैमित्तिक जो घड़ा बना वो उसका कार्य नहीं है, उसकी पर्याय नहीं है, परंतु निमित्त की अपेक्षा हम उसको नैमित्तिक कार्य भी कहते हैं। उपादान और उपादेय एक द्रव्य और उसके पर्याय को कहेंगे। अब उसी जो उपादेय रूप जो पर्याय हमने देखी थी उसी को परद्रव्य की वो निमित्त की अपेक्षा से हम उसको कहेंगे तो ये वो उस निमित्त का ये नैमित्तिक है। नैमित्तिक भी कार्य को कहते हैं, ये कार्य दो भिन्न द्रव्यों की बात है ना, ये कुम्हार ये निमित्त है, नैमित्तिक जो घड़ा बना वो उसका कार्य नहीं है, उसकी पर्याय नहीं है, परंतु निमित्त की अपेक्षा हम उसको नैमित्तिक कार्य भी कह सकते। तो कार्य तो एक ही हुआ, उपादान की ओर के ओर से एक ही चीज में होती है, निमित्त और नैमित्तिक भिन्न भिन्न होते हैं, निमित्त अलग है और नैमित्तिक परद्रव्य की पर्याय। अब गुरु ने शिष्य को पढ़ाया या शिष्य का ज्ञान वहां बढ़ा, शिष्य का ज्ञान पहले कम था अब उसका ज्ञान बढ़ा, तो ज्ञान बढ़ा यानी ज्ञान हुआ ये कार्य हुआ, तो ज्ञान हुआ ये कार्य हुआ, उसको उपादान की ओर से क्या हो करेंगे, उपादेय। उसका उपादान कौन है, वो शिष्य का ज्ञान गुण, बराबर। और निमित्त गुरु, तो गुरु और उस शिष्य का ज्ञान में कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक। मैंने हाथ उठाया, ये हाथ उठाए उपादेय, उसका उपादान कौन है, उद्गल द्रव्य हाथ, हाथ का जो स्तंभ है वो, और उसका निमित्त कौन है, मैं। तो ये जीव और हाथ, ये हाथ उठा, इसमें कौन सा संबंध आया, निमित्त नैमित्तिक संबंध। मैंने मैंने मैं बोल रही हूँ, ये भाषा निकल रही है, ये तो भाषा रूप जो कार्य हुआ उसको मैं उपादेय कहूंगी, तो उसका उपादान कौन है, भाषा रूप कार्य का उपादान उद्गल, भाषा वर्गना उपादान, भाषा रूप ये शब्द परिणमित हुए वो उपादेय, और जीव निमित्त। तो भाषा जो है वो जीव का क्या है, कार्य कैसा कार्य है, उसके साथ कौन सा संबंध है जीव का, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मोक्ष मार्ग में प्रकाशक में आता है कि जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। सुबह से शाम तक हम जो जो शरीर को, शरीर की क्रियाएं हो रही है, हम उसको जान भी रहे हैं, क्योंकि हम भी इतने ही प्रदेशों में है फैले हुए। मैं जीव द्रव्य हूँ, ये मेरा विषय पैसा ही है, और इन्हीं प्रदेशों में ये पुद्गल भी आकर बसा है। आप जाकर किसी ऐसे कीचड़ में डुबकी लगाओगे तो कीचड़ भी ऐसा ही रहेगा ना, तो कीचड़ आप है क्या। तो वैसे मैं जीव द्रव्य हूँ, आरोपी हूँ, परंतु अभी इसी में आकर कुछ पदस्थित है, तो मेरी और इनकी निमित्त नैमित्तिक क्रियाएं होती रहती, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं तो यहाँ उपस्थित हूँ, बराबर, और मेरा कार्य जानने रूप चल रहा है, तो मेरे ज्ञान में ये सारा आ रहा है, तो यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ गया। क्या हुआ, स्पर्श गुण की पर्याय ठंडे रूप थी वो गर्म हुई, तो कार्य हुआ यहाँ बुखार आने का, वो कार्य उपादेय हुआ, उसका उपादान स्पर्श गुण, इसका पुद्गल का स्पर्श गुण। और मैंने तो वहां खाली जाना इसको, उसमें मैं निमित्त भी नहीं है, निमित्त भी और कोई है वहां, समझो इन्फेक्शन हुआ है या कुछ हुआ है ना, बुखार है ना, मैंने बुखार तो नहीं लाया है, तो मैं तो उसमें निमित्त भी नहीं हूँ, मैं अकेला जानने वाला हूँ। और हम मानते क्या है, मुझे बुखार आया, और हम कितनी चिंतित हो जाते। तो जब समझ में आया कि वहां जो गर्म हुआ है उसका उपादेय जो हुआ है, गर्म पना हुआ है, कार्य हुआ ना वो उपादेय, उसका उपादान उद्गल द्रव्य, और उसका निमित्त और कुछ भी, समझो टाइफाइड हुआ है या कुछ टीबी हुआ है और कुछ हुआ है, वो उसका निमित्त। तो ऐसे हम उसके उपादान उपादेय निमित्त घटाने से हमारा क्या कार्य है, हम किस किस के करता है, ये परद्रव्य की कौन सी पर्याय है, मेरी कौन सी पर्याय है, इसके हमको विश्लेषणात्मक देखने की बुद्धि, हमारे चश्मा ही है सारा, ये आगम चक्षु कहते हैं इसको शास्त्र में, इसको क्या कहा, आगम चक्षु, यानी देवों के पास अवधि चक्षु है, अवधि ज्ञान के द्वारा जानते हैं, और हमारे आपके पास या मुनियों के पास कौन से होते हैं, आगम, ये प्रवचन सार में बात आती है मेरे कहते 234 या कोई ऐसी गाथा होगी वहां, तो ये आगम चक्षु से देखने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो आगम किसने बताया है, केवल ज्ञानियों ने बताया है, तो केवल ज्ञानियों ने जो दिव्य ज्ञान से, केवल ज्ञान से जाना है, उनके तो दिव्य चक्षु है, तो उसके द्वारा जो जाना है वो हमें आगम के द्वारा सारा दिखाई देता है। मेरु पर्वत कितना ऊंचा है बिंदुबेन, 1,00,000 योजन, और ऊपर वो 40 योजन की चिल्ली का, वो कहां से, कौन से चश्मे से देखा आपने, हाँ आगम के चक्र, तो ये हाँ तो आगम के चश्मे से पूरा लोकालोक दिख रहा है, तो आसान है ना। अभी केवल ज्ञान नहीं है और पूरा लोकालोक हमको दिख रहा है, कैसे? ये आगम का चश्मा लगाया, तो ये सारा निमित्त कौन है, उपादान कौन है, पूरा का पूरा हमारे सामने सारा अभी आ रहा है। हम तो जानते नहीं स्पर्श रस गंध वर्ण जो है उसकी जो पर्याय है, पहले सिद्धांत प्रवृत्ति कम इसी की थी, 20 पर्याय, ये क्या फायदा इसका सीखने से। तो जब हमको पता चलता है कि ये जो पर्याय रूप कार्य है उसका उपादान हमको देखना है, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण में देखना पड़ेगा, तो उसका कर्ता वो पुद्गल द्रव्य उपादान कारण उपादेय हुआ, और हम वहां हो सकते हैं निमित्त में भी हो या न हो वो बात अलग, और हम आज तक उसी को अपना कार्य मान रहे थे। अभी अपने में जो जो पर्याय होती है ज्ञान दर्शन की जो कुछ है, श्रद्धा गुण की मिथ्या स्वरूप पर्याय हो रही है, कारण कौन सा कर्म, उपादान कारण कौन सा कर्म, तो मिथ्या तो है जीव में, तो जीव स्वयं उसका करता, तो सम्यक दर्शन करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, जीव स्वयं ही उसका उपादान। तो हम मिथ्यात्व या सम्यक दर्शन करने में पूर्ण स्वाधीन है, स्वतंत्र है, और हम ही उसके करता है, दूसरा कोई हमको आके पलटाने वाला नहीं है। कोई गुरु आवे, अरे हमको गुरु कुछ नहीं दिखता है, हमारा कार्य कैसा हुए, कहाँ पर बुद्धि पड़ी हमारे पराधीनता। जब उपादान की इतनी तैयारी होती है तो सामने निमित्त हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं, पता नहीं लगता कि ये अरे अपना ये ऐसा भाग्य हुआ था और ऐसा निमित्त मिल गया। अभी निमित्त उपादान संबंधी ज्ञान होने की तैयारी थी आपकी, ऐसा उदाहरण के तौर पर लेती, और हमारा यहाँ रोज का कौन सा विषय चल रहा था, संदृष्टि अधिकार, रोज करना नियोग चलता है यहाँ, तो हमारा कोई विचार नहीं था बीच में लेने का, तो ऐसे सारे कैसे कैसे हुए। तो अरविंद भाई भी बाहर गए यात्रा करने के लिए, और फिर मंजू बहन भी उनकी दसवीं की परीक्षा है उनके लड़के की, तो हमने सोचा चलो अभी ये विषय ले लो, तो किसी ने आपने बताया कि निमित्त उपादान ले लो, और हमने यहाँ निमित्त उपादान की चर्चा करें। तो जब ज्ञान गुण की यहाँ योग्यता हो जाती है निमित्त उपादान का ज्ञान करने की, तो वो सामने निमित्त अपने आप हाजिर हो जाता है, वो परद्रव्य की पर्याय निमित्त रूप से पलटाने में हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें आज तक ऐसी बुद्धि पड़ी है कि अरे हम निमित्त को कहाँ ढूंढे, हमको तभी समय दर्शन प्राप्त करना है करना है करना है, तो हम कहाँ हमारी सारी पराधीन वृत्ति पड़ी रहती है पर की ओर। तभी हमको समझ में आया कि जो उपादेय हो है कार्य जो है उसका कर्ता उपादान स्वयं है। अभी क्रमबद्ध पर्याय में ये भी सारी बातें आई थी, हर एक द्रव्य की अनादि से अनंत काल की एक एक पर्याय सुनिश्चित है, दीपाली याद है ना, तो इस समय कौन सी पर्याय होगी ऐसी योग्यता उस द्रव्य में ही पड़ी है, एक एक समय की, ये सारी आएगी तब समय की योग्यता वाली में, ये सारा आने वाला है। तो ये एक एक समय की योग्यता यानी अपना द्रव्य का एक एक समय का पर्याय निश्चित है, और उसका उपादान हम स्वयं है, तो हम स्वयं की ओर देखेंगे, उपादान की ओर, त्रिकाली जो उपादान है कायम रहने वाला उसकी ओर हमारे अंतर्मुख होकर हम उसका आश्रय लेंगे, यानी उसको जानते रहेंगे, तो ऐसे योग्य मोक्ष मार्ग की पर्याय भी प्रकट हो। तो उसमें कोई पराधीनता नहीं, कोई चिंता है ही नहीं ना, ये बिल्कुल एकदम स्वतंत्रता की बात है, द्रव्य गुण पर्याय एक एक बात स्वतंत्र है, और जब जब ये स्वतंत्रता की बात करके हम अंतर्मुख होते हैं, या वो अंतर्मुख होने के पहले भी जो तत्व निर्णय हम सही करने लगते हैं, तो वैसे हमको बताने वाले भी अपने आप मिल जाते, अपने बाकी भी संयोग ऐसे बन जाते, हमको स्वयं की रुचि लग जाती ना, आत्मा को ही मुझे जानना है बस, तो ऐसे माहौल भी ऐसे मिल जाते हैं, अपने को तैयार होते जाते हैं कि अपना कार्य होता चला जाए, तो उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं कि अभी कैसा होगा, मेरे तो ऐसा संयोग दिखता है कि अभी मुझे कुछ अनुकूलता नहीं लग रही है। अरे प्रतिकूलता में जितना कार्य होता है उतना अनुकूलता में नहीं होता, सातवें नरक के नारके को भी सम्यक दर्शन होता है, वहां इतनी बाह्य में वेदना है कि उसके प्रति अरुचि हो जाती है सारे संयोगों के प्रति, और फिर उपयोग कहाँ जाएगा, अपने को पकड़ेगा है ना। तो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो संयोग, तो उसके अपने फेवर में हम बना लेंगे कि प्रतिकूल है चलो इनकी दृष्टि छोड़ो, अनुकूल है चलो अनुकूल है, उसमें दूसरे संयोगों की तरफ क्या देखें, हम अपनी ओर देखें, अनुकूल है ना कोई चिंता नहीं है ना, चलो अपने ओर देखें, यानी उसको कैसे अपने कार्यकारी करना ये अपने हाथ की बात है। देखो अभी उपादान और उपादेय और निमित्त और नैमित्तिक चार बातें हुई कि कितनी हुई, हाँ तीन ही बता रहे। देखो ये जो है ना कार्य हुआ ये है उपादान और ये है निमित्त। उपादान की तरफ से देखा हमने तो ये हमको उपादेय दिख रहा है और इधर से देखा तो नैमित्तिक दिख रहा है। कार्य क्या है, एक ही है कार्य, ये कार्य हुआ एक विशिष्ट कुछ और यहाँ है वो निमित्त की आंख और वहां से देखेंगे तो क्या दिख रहा है वो कार्य नैमित्तिक और समझो यहाँ से देख रहे तो उपादेय। कार्य एक ही है, कार्य को ही क्या कहा हमने नैमित्तिक या उपादेय। नैमित्तिक कब कहेंगे, जब निमित्त की अपेक्षा बात करेंगे तो इसी कार्य को नैमित्तिक करेंगे, जब उपादान की तरफ से बात करेंगे तो इसी कार्य को उपादेय करेंगे। क्या ना है इतना, तो बातें तीन है कि चार है, तीन। देखो इसको फिर करते, जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उस पदार्थ को उपादान कारण, देखो पदार्थ को उस द्रव्य को उपादान कारण कहा और जो कार्य निष्पन्न हुआ यानी जो पर्याय हुई उसे उपादेय कहा जाता है, तथा निमित्त कारण की अपेक्षा कथन पर करने पर उसी कार्य को यानी जो हमने जिस कार्य को उपादेय कहा था उसी कार्य को नैमित्तिक भी कहा जाता है। ये दो तीन वाक्य का अर्थ ख्याल में आया, हाँ प्रफुल्ल भाई, जिसको हमने उपादेय कहा था उसी को निमित्त की तरफ से कहेंगे तो नैमित्तिक कहते हैं। तो हम शास्त्र में बातें आती है ना, एक कर्म और जीव का कैसा समय है निमित्त नैमित्तिक है, शरीर का आप कुछ करते देखो हम हिलाते हैं ना निमित्त नैमित्तिक है, तो ऐसा लगता था अरे ये निमित्त नैमित्तिक बोल देते हैं तो कैसा हुआ, एनेस्थेसिया दिया और वहां तो जीव बेहोश हो गया, कैसे हुआ, अभी तो अच्छा जान रहा था और अभी तो बेहोश हुआ, क्या हुआ, देखो इस पर घटाते यह कार्य क्या हुआ, ज्ञान गुण एकदम हीन परिणमित हो गया, बेहोश हुआ, तो वो कार्य कहाँ हुआ, कौन से द्रव्य में, जीव द्रव्य में, तो उसका उपादान कौन है, जीव द्रव्य का ज्ञान गुण, उसका निमित्त कौन है, वो एनेस्थेसिया, तो उसमें और इसमें क्या संबंध है, निमित्त नैमित्तिक है, और हम क्या उससे हमसे झगड़ा करने को जाते, यहाँ तो मॉर्फियो का इंजेक्शन देते वहां बेहोश हो जाता है और आप कहते कुछ कार्य नहीं करता, तो पहले हमको समझा दे नहीं ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो ऐसा लगता है क्या कुछ नहीं सुझा तो निमित्त नैमित्तिक बता देते, तभी आंख नहीं थी ना ये निमित्त उपादान, तो आगम चक्षु नहीं थे, हाँ अभी हम ये आगम चक्षु बेचते है क्या, बेचते नहीं पैसा लेके नहीं देते है लोग दिखाते, ये अपनी बात है, ये अपनी मूरी है, भगवान महावीर ने अपने लिए रख छोड़ी है, अपने कोई बाप दादा ने इससे छोड़ी है तो हम इसे छोड़ देंगे क्या, कि जाके उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे, तो ये अपनी चीज है अपने घर की चीज है। हाँ इस प्रकार हम देखते हैं चौथी लाइन कि एक ही कार्य को उपादान कारण की अपेक्षा उपादेय और निमित्त कारण की अपेक्षा नैमित्तिक कहा जाता है, तो निमित्त और नैमित्तिक दो द्रव्यों में होते और उपादान उपादेय एक ही द्रव्य में घटित होता है। जो घटरूप कार्य, घट कहो या घड़ा कहो, तो घटरूप कार्य मिट्टी रूप उपादान कारण का उपादेय कार्य है, वही घटरूप कार्य यानी उसी कार्य को, अन्य समय में नहीं उसी समय, वही घटरूप कार्य कुम्हार रूप निमित्त कारण का नैमित्तिक कार्य है। तो कुमार और घट में कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तात्पर्य यह है कि मिट्टी और घट में उपादान उपादेय संबंध है तथा कुम्हार और घट में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो बाई ने रोटी बनाई तो इसमें उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्तिक घटाना, आप बताइए कौन घटाएगा? आप लगाना। तो उपादान उपादेय संबंध किसमें है? आटा और रोटी। उपादान पहले कहने ना, जो हम शब्द पहले लेते हैं ना, उपादान उपादेय, तो उपादान कौन है? आटा, और रोटी उसका उपादेय। बाई और रोटी में नैमित्तिक, तो बाई और रोटी में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैंने अक्षर निकाले इसके ऊपर, मैंने चौक से यहाँ अक्षर निकाले तो ये अक्षर यहाँ लिखे, वो कार्य हुआ। तो आप बताइए। हाँ प्रकुल भाई। हाँ इसका उपादान पुद्गल द्रव्य, ये चौक है ना, ये पुद्गल द्रव्य, वो स्वयं अक्षर रूप परिणमित हुआ। हम पेपर पर अक्षर लिखते तो वो क्या ही स्वयं अक्षर रूप परिणमित हुई है, तो वो उसका उपादान उपादेय। अभी हाँ तो निमित्त नैमित्तिक, तो हम क्या मानते हैं? मैंने पुस्तक लिखी। हाँ आपने पुस्तक लिखी कहते ना लोग, वो भी निमित्त है ना। अभी हम एक निमित्त की अपेक्षा बोल रहे हैं ना, निमित्त अनेक होते हैं, उसमें भी निमित्त के बहुत सारे प्रकार भी है, वो उसके में तो बाद में उलझेंगे, पहले तो निमित्त क्या है उसको नक्की करें। तो मैंने अक्षर निकाले, हमको कितना अभिमान होता है, देखो मैं ऐसे अक्षर, मोती जैसे मेरा अक्षर। देखो आप निकालोगे तो ऐसा होता है, मैं निकाले तो मोनी सम, मोती समान। हम कहते ना कि पुरुष रोटी बनाते तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया और सिलोन का नक्शा होता है, और हम बनाते हैं लेडीज तो एकदम रोटी गोल होती है। देखो हमने, हम बनाते कि नहीं बनाती, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हम कहां मना कर रहे हैं। परंतु वो कौन सा संबंध है? कर्ता कर्म वाला संबंध नहीं है। कर्ता कर्म कहो या उपादान उपादेय कहो, एक ही बात। तो कर्ता कर्म संबंध हमेशा एक ही द्रव्य का उसके पर्याय में लगेगा, और निमित्त नैमित्तिक संबंध दो भिन्न द्रव्यों में लगेंगे। तो निमित्त की उपस्थिति होती है, वो पर्याय रूप परिणमन नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो बस उपस्थित रहता है। तो हम पूरी, हम सारी अपनी ओर लेते थे ना, पूरा जिम्मा दूसरों के कार्य का। देखो मैंने ये कार्य किया, ऐसे मैंने बिल्डिंग बांध दी, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने ऐसा पुस्तक लिखा, मैंने ये किया वो किया, ये क्या हुआ? सारा वेस्ट गया ना, इंदू बहन इतना काम किया वो। देखो ये जो अभिमान है ना, वो नष्ट हो जाता है, सही जानकारी हो जाती है। तो कौन किसका कार्य कहाँ हो रहा है, और हमने तो जानने का कार्य किया था, फिर भी हमको निमित्त कहलाया लोगों ने। अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है कि हे जीवो मोह में मत नाचो, कि अमृतचंद्र आचार्य ने ग्रंथ लिखा है, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसे भाव खाने के लिए लिखा है क्या? क्या कहते हैं? मोह में मत नाचो कि अमृतचंद्र आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा है। तो वे जानते थे कि ये जो अक्षर रूप परिणमन है वो वहां पुद्गल का परिणमन है, मेरा उसमें कुछ नहीं है, तो अपना और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा वो जानते थे। वो कर्ता कर्म संबंध है ऐसा नहीं जानते, यानी वो नहीं है ऐसा जानते। मेरे में और ये ग्रंथ लिखने में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परंतु हे सामने वाले जीवों को बता रहे कि तुम ऐसा मत मानो मिथ्यात्व के बेहोश में के होश ऐसे गवा कर कि अमृत चंद्राचार्य ने ये बनाया। अक्षर रूप जो परिणाम हुआ है, यहाँ ग्रंथ रूप जो रचना हुई है, वो पुद्गल की रचना है, मेरे में उसमें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो उसकी भी बात नहीं की उन्होंने, उन्होंने तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता, मैंने बनाया ऐसा आप मत कहो, ऐसा कहते हो। अकेले कहने के लिए नहीं कहते, वैसा ही सत्य परिस्थिति है, वैसी बिल्कुल एक ही द्रव्य। समय स्थान में लिखा है यह परिणमति सहकर्ता, यानी जो स्वयं परिणमित होता है वह उस कार्य का कर्ता होता है, हमेशा ये यहाँ लिख लेना, यह परिणमति, आपको लिखना है। हाँ, ताबीज अभी कितने ताबीज कहाँ कहाँ बांधेंगे। देखो वो पहला जो ताबीज बांधा था ना, उसका अर्थ इसमें से निकलता है। देखो यह परिणमति, यह यानी जो परिणमता है स्वयं, सह कर्ता, देखो दंड दे दो। देखो मैंने लिखा है ना अक्षर, क्यों इंद्रदेन मैंने लिखे कि अभी जो पहला ताबीज बांधा था ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? प्रत्येक द्रव्य अपने पर्याय का कर्ता है। अभी हमने देखा था, जो जो पर्याय है वो अपना अपना उपादेय है, वो अपना कर्म है, तो कर्ता और कर्म अपने पर्याय के साथ लगेगा। दूसरा द्रव्य उसके अपने पर्याय कर रहा है, कोई भी द्रव्य खाली बैठा नहीं अनादि से कभी भी। प्रत्येक द्रव्य हर समय अपने अनंत गुणों का उनका पर्याय 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 चलता रहता है, परिणमन परिणमन परिणमन। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने के लिए उसको फुर्सत ही नहीं अपने करने से। हम जाके किसी के घर में काम करें, अरे हमारे काम निपटता नहीं, हम कहाँ जाएंगे दूसरे का काम करने के लिए, कहते ना, अरे अपना ही नहीं निपटता औरों का क्या करें हम। तो कोई द्रव्य खाली बैठा ही नहीं, और हम कर्ता उसी को कहते हैं जो स्वयं परिणमित हो। तो एक द्रव्य अपने पर्याय रूप से परिणमित है, उसका वो कर्ता होगा। दूसरा द्रव्य, ये ए द्रव्य है, उसकी पर्याय उसमें चल रही है, उसका वो कर्ता। बी द्रव्य की पर्याय बी द्रव्य में हो रही है, उसका वो कर्ता। तभी यह द्रव्य किसका कर्ता होगा? दूसरे द्रव्य का या उसके पर्याय का? वो कर्ता किसका होगा? अपने ही पर्यायों का कर्ता होगा। तो इसलिए हम कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, होता ही नहीं है वो। उसमें कभी कभी समझो इसकी पर्याय, इसके अनुकूल, इस कार्य के अनुकूल अगर दिखने में आए तो हम इसको, ये इसको निमित्त कहते हैं, आरोप करते हैं। वो द्रव्य उसी समय वहां उपस्थित है और उसने कुछ नहीं किया, उसने इसमें थोड़ा धक्का मारा, कुछ सहयोग किया, कुछ मदद की, ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी हम उसको निमित्त कह देते। इतना ही उसका कार्य क्या था कि वहां वो उपस्थित था, वो बताता है कि यहाँ ऐसा कार्य हो रहा है। निमित्त की ओर देख के भी हमको अंदर के कार्य का पता चलता है। जब 28 मूल गुण का यहाँ देख रहे हैं, जब सच्चा मुनिपन होता है तो बाह्य में भी 28 मूल गुण के वैसे परिणाम होते हैं, शरीर की भी वैसी नग्नता वगैरह सारे होते हैं, तो उसको देखकर हम यहाँ का पता लग सकता है। परंतु कोई खाली 28 मूल गुण पाले इसलिए वहां हो ही ऐसा नहीं है। तो ये निमित्त उपादान का भी सहज सुमेल होता है, ये सारे सहज 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 है, इसमें कहीं खींचतान नहीं है। ये सारा हम पढ़ेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें, तो अभी तो हमने शुरू किया है। तो ये समझ है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्यों नहीं करता? वो करता हम खुद को कहे नहीं, नहीं करता तो हम अपने पर्याय का ही कह सकते, दूसरे पर्याय का करता उसका अपना द्रव्य है, और किसी पर्याय का करता उसका अपना द्रव्य है। तो प्रत्येक पर्याय का करता अपना अपना द्रव्य है, तो एक द्रव्य दूसरे पर्याय का या दूसरे द्रव्य का करता हो ही नहीं सकता है। ख्याल में है ना, हम खाली बोलने के लिए नहीं बोलते, उसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा। पहले भी अनेक वो वस्तु तो गुण के द्वारा, द्रव्य तो गुण के द्वारा, अगुरु लघु तो गुण के द्वारा, वो तो हमने सिद्ध किया ही है पहले कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अब ये उपादान निमित्त में से भी घटित हुआ, कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य का उसके पर्याय में लगेगा, उसको हम उपादान उपादेय कहते हैं। और जो भिन्न द्रव्य के साथ हम जो भी कारण बताते हैं, वो कौन सा कारण कहलाता है? निमित्त। और फिर वो कार्य नैमित्तिक, तो उसमें हम निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं। तो आज से हम ऐसा बराबर कहेंगे या जानेंगे, मानेंगे भी कि शरीर के और मेरा कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उसके हम कर्ता होकर बैठे ना। हर एक की मेहनत लगाना, सभी कार्य जो जो चल रहे हैं वो कार्यों को होते हुए जानना, और उसका कर्तापन उसके उसके द्रव्य के माथे सौंप देना। ये सारा बोझा यहाँ पर लेके नहीं घूमना, देखो ये हल्का सब महसूस हो जाएगा अपने को, ये सारी बात ध्यान में आएगी तो बिल्कुल अनंत द्रव्यों का भार हम माथे पर लेके घूम रहे हैं, तो सारी निराकुलता हो जाएगी। इस सारा तत्व निर्णय करने पर इतनी निराकुलता हो जाती, फिर आत्म सन्मुखता हो जाए, क्योंकि बाहर तो कुछ करना करना रहा नहीं, जिसको बाह्य में कुछ निपटता नहीं ना, बाह्य के करने से ये मान्यता से वो अंदर नहीं जा सकता। अभी जिसने जान लिया सब अपना अपना कर रहे, किसका क्या करना, जिसके बच्चे सब बड़े हो गए सब करते हैं वो क्या, अरे हम तो अभी निराकुल है, हमको धंधे पानी में कुछ देने की देखने की जरूरत नहीं, क्यों, हमारे बच्चे सियाने हो गए सब अपना अपना कार्य करते हैं। मम्मी जी क्या करती है, नहीं वो बहू आई गई वो भी घर का सारा निपट लेती संभाल लेती, मुझको कुछ नहीं करना, तो क्या करेंगे, आराम से घर में बैठेंगे। वैसे जब हमें पता चला कि अनंत परद्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं तो हमको कहाँ देखना रहा, निश्चिंत हो गए ना हम, चलो पहले तो हम करते थे सबका, अभी अपना अपना कर रहे कुछ करने, हाँ निराकुल हो गए ना, पहले तो कुछ माथे पर चिंता थी, किसी का भार लेकर हम बैठ नहीं सकते, क्यों, किसी का भार करने धरने का बोझा माथे पर हो, कोई भी किसी बात की टेंशन हो तो उपयोग अपने अंतर सम्मुख नहीं हो सकता। तो अभी पता चला कि सारे ही द्रव्य अपना अपना कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना, और अपने भी द्रव्य में होने वाली पर्याय 3 साल की निश्चित है, एक समय भी पर्याय अपनी होने वाली अलग आगे पीछे नहीं करेंगे, तो कहाँ चला जाएंगे हम, और डुबकी लगाएंगे आराम से एसी में बैठकर आनंद मना लेंगे, क्यों, तो इसको बढ़ते है ये नीचे से तीसरी लाइन, घट जो घट रूप कार्य मिट्टी रूप उपादान कारण का उपादेय कार्य है, वही घट रूप कार्य मिला, हाँ पूरण, हाँ वही घट रूप कार्य कुमार रूप निमित्त कारण का नैमित्तिक कार्य है। तात्पर्य यह है कि मिट्टी और घट में उपादान उपादेय संबंध है, और कुमार और घट में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यदि हम उसे सम्य दर्शन रूप कार्य पर घटित करें, हमने पहले किया ही था ना, तो यहाँ कर रहे, तो इस प्रकार कहना होगा आत्मद्रव्य या उसका श्रद्धा गुण उपादान कारण है, सम्यक दर्शन या पर्याय हुई, कौन से गुण में हुई प्रफुल्ल भाई, सम्यक दर्शन या पर्याय, कौन से गुण की पर्याय है अभी हमने, हाँ श्रद्धा गुण, वो श्रद्धा गुण किसका है, जीव द्रव्य, तो इसलिए आत्मद्रव्य या श्रद्धा गुण को उपादान कहा, और सम्यक दर्शन उपादेय है, यहाँ ख्याल में आया आपको, सेवन उपादेय, उपादेय क्योंकि वो कार्य है और वो कार्य का कर्ता कौन है, आत्मा, तो आत्मा उपादान, सम्यक दर्शन उपादेय। इसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म का अभाव अथवा सद्गुरु का उपदेश निमित्त है, देखो निमित्त बहुत होते हैं ना, इसलिए उन्होंने यहाँ 2 निमित्त लिए, क्योंकि वहाँ कर्म में भी कुछ परिस्थितियां बनती है, जब आत्म सम्मुख दृष्टि होती है तो कर्म में भी भागा भाग दौड़ा दौड़ी चालू हो जाती है, वो वहाँ क्या होता है उसकी उपस्थिति बताते हैं, कौन सा कर्म रहता है कौन सा भाग जाता है, तो उसके लिए कहते हैं कर्म का अभाव। सद्गुरु का उपदेश वो निमित्त है और सम्यक दर्शन नैमित्तिक है, तो गुरु का उपदेश और सम्यक दर्शन इसमें कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, या कर्म का अभाव और सम्यक दर्शन इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ख्याल में है ना। और अनादि से ही जीव ने क्या माना, अरे हमारा तो दर्शन मोह इतना है 70 कोड़ा कोड़ी का, कोड़ा कोड़ी सागर का, इसलिए हमको सम्यक तो नहीं हो रहा, अरे पराधीन माना अपने को कि कर्म का इतना बड़ा है ना उनके ऊपर पूरा बोझा आवरण, इसलिए हमको सम्यक तो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ है नहीं है। जीव जब तत्व निर्णय करने लगता है, अकेले अभी ये रुचि पूर्वक बातें सुन रहे हैं, तो हमारे तो जब और अभी तो प्रायोगिक लब्धि के पहले से ही अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है स्थिति, रुचि पूर्वक तत्व ज्ञान सुनते हैं और बार बार उसके ऊपर वो विचार करते रहते हैं तो वो 70 कोड़ा कोड़ी वाला रहता भी नहीं, पूर्व में बांधा हुआ भी सारा घटता है, वो कैसा घटता है और कितने उसके खंड टुकड़े टुकड़े होकर चले जाते हैं, ये सारा हम यहाँ सीखे थे लब्धिसार और स्वप्नासार में। और ये ऐसे खाली किसी को कुछ करने की बात नहीं है, एक्चुअल परिस्थिति है कि हम आत्मा संबंधी जान रहे हैं, ये सारा ज्ञान कर रहे हैं, तो ये अपने आप कर्म चले जाते हैं, उसके लिए कर्म की तरफ बिल्कुल देखना नहीं पड़ता। सीरियंस को तो कर्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो उसके भी कर्म जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, वो जब सम्यक दर्शन करेगा तो उसके भी कर्मों का विषय से जितना आभा होने योग्य है उतना उसका भी हो जाएगा। तो ये जब हम आत्मा की तरफ दृष्टि करते हैं, आत्मा की रुचि करते हैं, आत्मा का ये सारा ज्ञान सुनकर हम अपनी ओर दृष्टि ले जाते हैं, अपने को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये उसके सम्यक दर्शन के पूर्व ही इतना सारा कार्य शुरू हो जाता है। सम्यक दर्शन तो आगे और उसके पहले ये सारे कर्म में इतने कम हो जाते हैं सारी स्थिति, और हर समय घटती जाती है। तो हमें ये खाली स्वाध्याय किया, हमको अब कुछ नहीं हुआ, हमारे कोई चिंता की बात नहीं, जिसका हुआ वो अच्छा, नहीं हुआ वो भी उस रास्ते पर है, अभी चलता रहता है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं इसमें। ये तो निराकुलता का पंथ है, यानी जो निराकुल बनाने वाला है ऐसा जो मार्ग है, उसके लिए आकुलता करने की क्या जरूरत है, ये तो सहज होने वाला सारा कार्य है। देखो तो श्रद्धा कौन उपादान है, सम्यक दर्शन उपादेय है, इसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म का अभाव अथवा सद्गुरु का उपदेश निमित्त है और सम्यक दर्शन नैमित्तिक है। देखो यहाँ एक बात कही उन्होंने कि उपादेय शब्द हमने पहले भी देखा था सात तत्व में, वहां कहा था हेय तत्व, कौन से हेय है, आश्रय और बंध हेय तत्व है, और उपादेय, उपादेय में फिर हमने तीन भाग किए थे, प्रकट करने योग्य उपादेय, हाँ आश्रय करने योग्य उपादेय, वो उपादेय वाला यहाँ नहीं लेना, वहां एक उपादेय ने ग्रहण करने योग्य ऐसा अर्थ था वहां, और यहाँ का उपादेय ने उपादान का कार्य वो उपादेय। तो ये उपादेय शब्द के दो अर्थ हैं, तो वो अर्थ अलग और ये अर्थ अलग। तो क्या कहते हैं कि यहाँ उपादेय शब्द का अर्थ ग्रहण करने योग्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकरण हम जो अभी पढ़ रहे हैं हेय उपादेय बताने वाला प्रकरण नहीं है, वो सात तत्व वाला वो तो हेय उपादेय, छोड़ने योग्य ग्रहण करने योग्य उसको कहते हैं हेय और उपादेय, तो वो हेय उपादेय अलग और यहाँ जो उपादेय बताया वो अलग। तो श्रीमद जी कहते हैं कि जे जे जहाँ जहाँ योग्य थे तहाँ समझू थे, तो जहाँ जो प्रकरण चल रहा है वहाँ उसका वो अर्थ जो होगा वो बराबर समझना। यहाँ तो कार्य कारण संबंधी प्रकरण है, हमने कार्य के कारण कौन है उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उस कार्य का कारण, तो उस कार्य को हम उपादेय कहते हैं, जब कारण को उपादान कहते हैं, कार्य को नैमित्तिक कहते हैं जब कारण को निमित्त में लिया जाता, निमित्त कारण की ओर से उसी कार्य को नैमित्तिक कहते हैं, उपादान कारण की ओर से उसी कार्य को क्या कहते हैं, उपादेय कहते हैं, उपादान उपादेय निमित्त नैमित्तिक। यहाँ तो कार्य कारण संबंधी प्रकरण होने से मात्र यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहा जाता है उसी कार्य को उपादान की अपेक्षा उपादेय कहा जाता है। अब यहाँ तक ही रुकेंगे हम, प्रश्न होगा तो पूछना, हम कल फिर चर्चा करेंगे उसकी और फिर आगे बढ़ेंगे। वाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतो रूप।